इस तरह लोग मौजूद हैं जो अलल इलान दावे भी कर रहे हैं, खवातीन भी दावे कर रही हैं कि जी कोई कहते हैं मैं ईसा हूँ, कोई कहते हैं मैं मेहदी हूँ।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में मसला ये नहीं लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है, वहाँ लगता है कि शैतान उनके पास आता है। तो ये शयातीन का भी वसवसा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो इंसान का यकीन और बिलीफ बन जाता है।
द पर्सनैलिटी और द कैरेक्टर ऑफ इमाम महदी, अहादीस के अंदर हमें कुछ उनकी खसलतें मिलती हैं कि वो इस तरह के होंगे, ये होंगे।
महदी के बारे में एक तो बात क्लियर है कि कुरान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान से महदी का कोई कॉन्सेप्ट निकालना ये तो कुरान के साथ जुल्म ज्यादती है। बहुत इम्कान है कि वो एक हुक्मरान जिसको लोग फासिक और फाजिर समझ रहे हैं,
और अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा, कोई इंसिडेंट हुआ
तो वो कुछ शुरू से ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला उसकी एक दिन में इस्लाह करेंगे और वो होगा भी कोई बजायर ये महसूस होता है कि रजुल मिन कुरैश मुराही की किसी रॉयल फैमिली से होगा,
जो हमें जंगों की पता चलता है जिसमें मुसलमानों को फुतूहात मिलेंगी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले।
ज्यादा यही महसूस होता है कि वो दुनियावी एतबार से जो है वो स्किल पर्सन होगा। हमारे यहाँ दीनी आदमी क्या समझता, हमारे शेख तफसीर शेख अदीब ऐसे ही टाइप होगा नहीं, वो एक सियासी आदमी होगा। देखिए जिसने उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है, मुझे बताएं वो कोई तहज्जुद गुजार होगा कि जैसे हदीस में था अल्लाह ताला उसकी इस्लाह करेंगे। सबसे पहली चीज जो उसके अंदर होगी सालियत तो बाद की बात है, वो तो बाद में उसमें आएगी, पहली ये चीज
कॉम्पिटेंस।
कॉम्पिटेंस
डॉक्टर साहब, आजकल जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के मामलात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से डिस्टर्ब हुई हुई है, तो पिछले दिन एक सवाल मेरे पास आया और उस भाई ने मुझसे ये पूछा कि मुगैरा भाई, जो इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया में और जिस तरीके से पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आपको हर जगह पर नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में, तो डोंट यू थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाए, क्योंकि हमें साइंस ऑफ द आवर जो अशरातुस्सा है उसके अंदर जो हमें सबसे बड़ा एक इनिशियल हमें समझ आती है, जो पहला साइन है जो एकदम जिसके बाद फिर बड़े बड़े इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, वो इमाम महदी का ज़हूर है। तो क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है वो बिल्कुल ही जिस तरीके से जिस मरहले पे जा चुका है, और शाम की जंग के हवाले से भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, फिर मदीना के अंदर या फिर इस तरीके से सऊदी अरब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वो हदीस आती है कि जो है ना इन दोनों का आपस में ताल्लुक भी है एक किस्म का, कि यसरब और यानी सॉरी सऊदी अरब और इसकी जो यानी ये जो हमारा है फ़लस्तीन शाम का जो इलाका है, इनका आपस में कनेक्शन भी है। एंड ऑफ द टाइम्स के अंदर कुछ ऐसे अफेयर्स होंगे जो इन दोनों के साथ लिंक कर रहे होंगे, मुख्तलिफ अहादीस हैं ज़ाहिर है इस हवाले से। तो जो एक कंसर्न ख़ासतौर पर इमाम महदी के हवाले से है, जो सिचुएशंस आपको नज़र आ रही हैं, पहले मेरा सवाल तो आपसे ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम इमाम महदी पर बात करने से पहले ये करें, आपका क्या ख्याल है कि डू यू थिंक दिस इज़ द टाइम इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? क्या हालात वो नज़र आ रहे हैं जो अहादीस सामने रख के हमें आते हैं, बैकग्राउंड क्या वो हालात कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, डू यू थिंक कि अभी उसमें कुछ ना कुछ टाइम मौजूद है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई हालात ऐसे हैं कि अच्छा इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है, क्योंकि अहादीस की रोशनी में हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि अहादीस हमें कोई एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं बता रही, लेकिन इशारे वगैरह मुझे
इशारे मिलते हैं।
बाकी ये बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मेहदी होने के दावे शुरू कर दिए। अच्छा
exactly.
एक बड़ा मसला है, एक वो मोहम्मद कासिम साहब हैं, पता
जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं,
मुझसे काफ़ी सवाल करते रहते हैं कि हज़रत इनके ऊपर कोई वीडियो बनाएं, तो इसको भी हम आखिर में टच करेंगे कि ये क्या मसला है, और ये अकेले ये साहिब नहीं है, तो कई लोग मुझे पर्सनल लाइफ में भी मिले हैं।
अच्छा, जिन्होंने दावा किया
जिन्होंने
महदी होने का।
तो चलें अब आ गया तो मैं इसको जरा थोड़ा सा
इसी कोई मेरे ख्याल पहले सवाल है
तबसरा कर रहे। मैं कुरान अकेडमी में था तो एक ऐसी जैसे लैपटॉप पे ना काम कर रहा था, तो एक लड़का आके बैठ गया जैसे आप बैठे, तो एक मसला है मैं काम किया जा, मैंने कहा ठीक है बच्चे बयान करो, तो कहते मेरे पास जिब्रील आते हैं। मैं उसकी तरफ देखी तो वो क्लीन शेप और बहुत अच्छी फैमिली का, जैसे आप कहते हैं कि जी मम्मी डैडी फैमिली का, और बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ फैमिली का पूछा, तो मतलब हमारे आप कह लें कि जी कोई नेबर पड़ोसी मुल्क हैं उनकी कोई रॉयल फैमिली के साथ उसका शजरा जुड़ता था, बहुत अच्छी फैमिली से था वो। मैंने कहा इसको क्या हो गया, तो अच्छा मैंने पूछा कि बताओ क्या मतलब क्या कहते हैं जिब्रील आपके पास आके ना, एक तो कुछ लोग तो है ना कह रहे हैं कि जी ख्वाबों में आते हैं उनको बाकायदा भी मतलब वो नज़र आता था जिब्रील, तो कहते मेरे पास वही लेके आते हैं। तो अच्छा, मैंने कहा वही में क्या है? कहते हैं कि वही में ये बात है कि तुम जीसस हो, ईसा हो, और
अच्छा
अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है उम्मत मुस्लिमा को लीड करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, वो वही मुझे भी सुनाओ जो जिब्रील ने आपके ऊपर
अच्छा
उतारी है। तो उसने अरबी में पढ़ के मुझे सुनाई।
अच्छा
हाँ, तो वो लेकिन अरबी गलत सलत थी, उसको मैं समझ गया कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने उसे थोड़ा सा कहा भी कि बच्चे देखो, मैं तो अरबी जानता हूँ, तो ये अरबी ठीक नहीं है, कम से कम जिब्रील की अरबी गलत गलत नहीं हो
वो
सकती।
तो ठीक
कहता फिर क्या है?
होगी।
मैंने कहा सीधी बात है, शैतान है।
अच्छा
कहता मैं भी पहले ये सोचता था शैतान है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन एक वाक्या हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये शैतान नहीं हो सकता, ये
अच्छा
जिब्रील ही है। मैंने कहा क्या वाक्या हुआ? कहता मैंने उसे उसको इम्तिहान में डाला। मैंने उसे कहा कि अगर तुम वाकईतन जिब्रील हो तो मुझे मोबाइल ला दो। उसने
अच्छा
मुझे मोबाइल ला दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, ये तो कोई भी तुम्हें ला के दे सकता है, तुम उसे सदर बुश का सर मांगो। उस वक्त सदर बुश था अमेरिकन प्रेसिडेंट
सवाल।
के, उसका सर मुझे ला के दो।
अच्छा
वो फिर थोड़ा खामोश हो गया ना, जैसे उसे लगा कि ये इन्होंने क्या कह दिया मुझे। मैंने कहा ऐसी चीज़ नहीं मांगते, ऐसी चीज़ मांगते हैं जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि मेहदी के बारे में जो अलामात है ना हदीसों में, वो हैं ही इस किस्म की
अच्छा
कि वो एक ऐसा साइन होगा उनके हवाले से कि जिससे पूरी दुनिया को गोया कि एक तरह
यकीन हो
से
जाएगा।
यकीन इत्मीनान हो जाएगा कि यार यही मेहदी है। अच्छा, फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने कहा मुझे बताओ घर वालों से शेयर की है ये बात? कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो क्या कहते हैं? कहते हैं घर वाले तो यही कहते हैं कि खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे, मतलब क्या
हाँ
है।
बिल्कुल ऐसे ही।
हाँ, तो क्या? तो मैंने कहा अब तुम मतलब क्या चाह रहे हो? कहते मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना उलमा के पास जाऊँ और उन्हें मैं ये
अच्छा
बताऊँ।
अच्छा
तो मैं जितनी उसकी काउंसलिंग कर सकता था, मुझे कहने लगा पहले आप हैं जिनके पास मैं आया हूँ। अच्छा, वो
सही।
मोहम्मद
अच्छा
कासिम साहब भी यही काम कर रहे हैं, या उनके एक
अच्छा
स्पोक्स पर्सन है, वो उनकी वीडियोस आप देखें,
हाँ जी जी
वो जो
जी
कहते हैं हमें ख्वाब में अल्लाह के रसूल आते हैं
सल्लल्लाहु अलैहि
और इसी
वसल्लम।
तरह से, वो आर्मी चीफ को मुखातिब होके वो कह रहे हैं कि जी मेहदी आ गए हैं और आप उनकी बैत करें। और मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आप क्या कहें बंदा के, स्टूपिड किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के। भाई मेहदी जो है ना, उसको अल्लाह ने भेजना है, उसके लिए तुमने दूसरों से साइल बन के जो है वो मांगना नहीं है हुकूमत, ठीक है? मेहदी आके खुद अपनी हुकूमत बजोरे बाजू जो है वो कायम करेगा। हदीसी तो इस हवाले से बहुत वाज़ हैं, वो ये थोड़ी है कि वो मंगता बन के दूसरों को कहेगा कि मुझे बना दो।
डॉक्टर
ये
साहब
मेहदी
ये
की क्या
यहाँ पे
खूबी
एक छोटा सा चीज़ सवाल जो इससे रेलेवेंट, हर दूसरे दिन ये मसला होता है। जैसे आपने बताया मेरे साथ भी कुछ ऐसे
है?
वाक़यात हुए।
बहुत
लेक्चर के दौरान एक बंदा आ गया, उसने भी बड़ा अजीब व गरीब उसकी हालत थी, बाल भी गंदे उसके, लंबे लंबे बाल बिखरे हुए और नाखून भी लंबे लंबे। और जैसे कहते हैं ना, ऐसा बंदा जो नहाया नहीं हुआ और गंदगी ये नहीं बकायदा, उससे स्मेल भी आ रही थी, बदबू भी आ रही थी। ऐसे सेशन में आया, तो सेशन के बाद हमारी उससे मुलाकात हुई। तो वो मुझे कहता है कि जी मैं ना मेरे पास दज्जाल आता है। अच्छा उसने कहा मेरे पास दज्जाल आता है, ये मेरी दज्जाल से मुलाकात है। और उसने मुझे कहा कि अच्छा, हमने कहा कि अच्छा दज्जाल आता है तो यानी क्या चीज़ का, कोई ऐसा चीज़ बताओ, एक्सपीरियंस बताओ जिससे तुम्हें इस चीज़ का ना श्योर हो कि वो दज्जाल ही है। तो कहता है उसने मुझसे ना तीन वादे किए थे, और इसको एश्योरेंस के लिए ना। तो उसने कहा दो वादे पूरे हो गए, एक वादा रहता है बस पूरा होने के लिए। तो वो दो वादे क्या थे मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, उस वक्त पूछा था उसे तो, लेकिन ना बहुत पहली बात है, बहुत पुरानी, इस्लामाबाद में किसी जगह पे था। अच्छा अच्छी बात ये थी, जिस तरह ये बंदा आपके पास आया तो वो कह रहा था कि मैं ना, मुझे कभी कभी फील होता है शायद ना मेरा ये मतलब मुझे आई एम कन्फ्यूज एटलीस्ट, यानी मुझे श्योरिटी है ज़्यादा, मतलब ज़न्ने गालिब है लेकिन आई एम नॉट 100% कन्फर्म्ड। अच्छा इसी तरीके से ना डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तानी हालात के अंदर भी बहुत से लोग इस तरह का ना वो कर रहे हैं, यानी दावे कर रहे हैं, और उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है। लोग अल्लाह माफ़ करे, पिछले दिनों एक खातून ने भी ऐलान कर दिया इस तरह के
हाँ, खातून
मामला।
ने भी, वो भी मैं सोशल
इसी
मीडिया पे
तरीके
देख रहा
से
था।
एक और खातून, मेरे साथ भी उनका मामला हुआ कि वो मेरे साथ मुझे वो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल वगैरह पूछे, तो उन्होंने भी कहा कि जी मुझे ना, मैं हूँ अल्लाह की तरफ से भेजी गई हूँ। और खातून है, बाद में पता चला कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया, एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम में वो उनको थी। और स्किज़ोफ्रेनिक जो बंदा होता है इंडिविजुअल, वो ना रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन के अंदर ना एक जो रियलिटी, यानी वो जो एक डिफरेंस है ना, उसको खूब बैठता है, और वो फिर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया को ही असल समझ लेता है, और बाज़ औक़ात वो कैरेक्टर अस्यूम कर लेता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ जो आजकल, अगेन मैं, हमारा मेन टॉपिक तो इमाम महदी, इंशाल्लाह उस पर आते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ लोगों के लिए कि अगर इस तरह लोग मौजूद हैं जो अलग इलान दावे भी कर रहे हैं, ख़वातीन भी दावे कर रही हैं कि जी कोई कहते हैं मैं ईसा हूँ, कोई कहते हैं मैं मेहदी हूँ, और सुबहानअल्लाह तो क्या आपका ख्याल में कि उसको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि उसको उस बेचारे को ये पता है कि यहाँ पे यानी रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे, हमारे पास एक ने नबी होने का ऐलान किया कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, तो राइटली सो उसके साथ सही हुआ जो होना चाहिए था, कहने का मतलब है। लेकिन एक एक कौन से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बरसग़ीर पाक व हिंद में लोगों के यहाँ हसासियत पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग ये जुरत करते हैं, इसका मतलब है कि ये नहीं कोई एनर्जी कोई पावर होती है, कोई मोटिवेशन होती है पीछे, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि लोगों को धोखा या बेवकूफ़ बनाना, इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं। तो आपका ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये कोई मसला हो सकता है, कोई शैतानी मसला है, जिन्नात का मसला होता है, क्या व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजंस हो सकते हैं?
जितने भी मैंने केसेस देखे हैं ना, तो असल में तो ये मसला सारा चलता है टीन एज से चलता है, ठीक है। अच्छा। उस वक्त इंसान की चूँकि हारमोन्स वगैरह की भी ग्रोथ हो रही होती है और इंसान थोड़ा ना हवाओं में उड़ा होता है,
सही है,
अच्छा, मतलब वो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को समझ रहा होता है, और उस वक्त उसकी इमेजिनेशन भी बिल्कुल एक्सट्रीम पे होती है। अच्छा, कुछ लोग तो उसको काबू कर लेते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ लोगों के लाशऊर में वो चीज़ रह जाती है, फिर बाद में वो पकती ना जब वो मैच्योरिटी की उम्र को पहुंचते हैं तो वो निकलना शुरू हो जाती है कि जी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, ठीक है, मतलब आम लोगों से कुछ हट के हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में मसला ये नहीं लगता कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है, वहाँ लगता है कि शैतान उनके पास आता है जिसने उनको बहका दिया।
अच्छा, यानी जिन्नात आते हैं?
हाँ, जिन्नात वगैरह आते हैं, और अच्छा। जिन्नात वगैरह जो है ना ये है। एक और साहब थे हमारे पास, उन्होंने इतना बड़ा वो आप कह लें कि जी वो भेजा, मतलब ये क्या है जी, वो ओराक वगैरह थे, पेजेस थे वहाँ कुरान अकेडमी में बकायदा कराची से, ये कहें जी ये वही है जो मेरे ऊपर नाजिल हुई। अच्छा, उनका वो खुलासा क्या था, वो सारा वो मैंने पढ़ी, वो पढ़ा जो कुछ भी था, वो बाइबल का सारा चरबा था। खुलासा ये था कि जी अल्लाह ताला बड़े परेशान है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है ना कोई लीडर नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सारे इसी के गिर्द घूमता है, जो मैसी होने का दावा जो है वो सारा, वो लीडरशिप नहीं है जी, लीडरशिप का फुकदान है, और वो नजर तो आ रहा है,
लीडरशिप क्राइसिस तो है हमारे पास, बिल्कुल
क्राइसिस तो वो मैं पूरा करूंगा, ठीक है। अच्छा, मेहदी का कॉन्सेप्ट भी सारा यही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी बेसिकली क्या है, लीडरशिप का ही है,
लीडरशिप का,
ठीक है, नबुव्वत और शरीयत तो मुकम्मल हो चुकी है, उसकी उसमें तो वो मसला नहीं है। तो अब वो उसका कहना ये था कि जी अल्लाह ताला ने ये प्लान किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दुनिया में भेजें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दोबारा दुनिया में आने वाले हैं, और उसके लिए मैंने ग्राउंड तैयार करनी है, यानी अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है कि उलमा से जाके मुलाकातें करो, उन्हें कायल करो, वो मेम्बरों पर लोगों को बयान करें कि मोहम्मद सल्लम दोबारा आ रहे हैं।
Exactly, यही मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कुछ इस तरह की बातें नहीं थी, वो भी ग्राउंड तैयार करता रहा, फिर उसके बाद वो नबूवत का ऐलान कर दिया
उसने ऐलान कर दिया। तो ये है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सूझती हैं, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, और बहुत दफ़ा ये हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना, वाकईतन उसको कोई चीज़ नज़र आती हो, लेकिन जैसे कुरान ने कहा ना कि शयातीन भी उतरते हैं,
वइन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम भी है,
हाँ,
वइन्न लिकुल्ली अफ़ाकिन अथीम,
उसे तनज़ुल के लफ्ज़ भी आते हैं, ठीक है, उतरते हैं झूठे आदमी के ऊपर, गुनाहगार आदमी के ऊपर, और ये खुफिया तौर पे उसको इल्हाम भी करते हैं,
इल्हाम भी करते हैं, नाज़िल होते हैं।
तो ये शयातीन का भी वसवसा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो इंसान का यकीन और बिलीफ बन जाता है, और वो शयातीन उसको ख्वाब में आके, ठीक है, किसी बुजुर्ग की सूरत में आके उसको मिसगाइड करते हैं, या वाकईतन में भी उसको बाज़ूकात नज़र आके भी उसको जो है वो मिसगाइड करते हैं, तो ये भी केस हो सकता है। बहरहाल यानी दोनों चीज़ें,
यानी लोगों को चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझें कि, और इंशाल्लाह भी हम, अब मैं उसकी टॉपिक की तरफ आता हूँ, तो इंशाल्लाह ये हमारे जो अभी इस एपिसोड का मकसद ये, फिर इस पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि हम वो चीज़ें वाजे कर दें लोगों के लिए, इंडिकेशंस, जिससे एटलीस्ट वो एक यानी एक फेक में और रियल के अंदर फ़र्क कर सकें, और ताकि उनके सामने ये चीज़ हो, और जाहिर है वो चीज़ें इंशाल्लाह भी क्लियर होती हैं। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक मेन, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइंस या फिर द पर्सनैलिटी और द कैरेक्टर ऑफ इमाम महदी, अहादीस के अंदर हमें कुछ उनकी खसलतें मिलती हैं कि वो इस तरह के होंगे, ये होंगे, और ज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें बयान इसलिए की थी ताकि हम उसको राइटली आइडेंटिफाई कर सकें। और मैं इंशाल्लाह जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस टू नो दैट कि इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि हम इस, आप ज़रूर इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करें हमारे दीन में किस तरह है, और कंपैरेटिव रिलीजन या कंपैरेटिव जो फिक्र आपका माशाल्लाह सब्जेक्ट है, अहले तशय्यो के हाँ ये एक उनके हाँ भी एक हर स्कूल ऑफ थॉट के हाँ महदी का तसव्वुर मौजूद है, ठीक है, तो उसके हाँ वो क्या है, इंशाल्लाह उस पर भी आते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक, प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि वो किस तरीके से यानी क्या उसकी खासियतें और कैरेक्टरिस्टिक्स।
एक चीज़ बहुत आम है, मतलब हम ना हदीस की तरफ जाने से पहले,
ठीक है,
महदी के बारे में एक तो बात क्लियर है कि कुरान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान से महदी का कोई कॉन्सेप्ट निकालना ये तो कुरान के साथ जुल्म है, ज़्यादती है,
सही है।
बाकी है कि मेजर साइंस में से है, इसका तज़किरा हमें अहदीस में, क़यामत के मेजर साइंस में से है। اب احادیث میں جو اس کا تذکرہ ملتا ہے مہدی کا, تو ایک تو صحیحین کی روایات ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, ٹھیک ہے, یعنی صحیحین کا میں جب آپ مہدی کے بارے میں روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایک آپ کے سامنے امیج آتا ہے مہدی کے بارے میں. اچھا دوسری ہیں سنن کی روایات. اچھا سنن میں ہمیں پتہ ہے کہ ضعیف روایات بھی ہیں,
بالکل
صحیح بھی ہیں, ٹھیک ہے, ملی جلی روایات ہوتی ہیں. تو سنن میں جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ذرا صحیحین کی روایات سے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صحیحین میں مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر تو سنن کی روایات سے اسی کانسیپٹ کی الیبوریشن ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ سنن کی روایات کو لے لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا کرتی ہیں, سنن کی روایات ایک پیرل نیریٹو بلڈ کرتی ہیں صحیحین کی روایات کے, یعنی صحیحین کی روایات میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو مہدی کا کانسیپٹ ہے اس کے پیرلل ایک نیریٹو بن جاتا ہے. تو وہاں میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے نا وہ اگنور کرنا چاہیے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے.
اچھا
ہاں, سنن میں وہ نیریٹو جو صحیحین کی نیریٹو کے اگینسٹ کھڑا ہو یا پیرلل کھڑا,
یعنی آپ کے خیال میں ہمارے پاس دو ایک پیرلل کانسیپٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں
مہدی کے. ہاں اچھا دیکھیے, اسی لیے تو مسائل پیدا ہوئی ہے نا ہمارے یہاں, لوگوں نے خلط ملط کر دیا. ضعیف روایتیں مہدی کے بارے میں لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دیں, کالے جھنڈوں والی روایتیں آپ کو پتہ ہے بہت عام ہو گئیں,
بالکل ایسی ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی اور پتہ نہیں,
ٹھیک,
ہمارے کچھ مبلغین اس کو بہت زیادہ
ایسے ہی ہے. اب اسے یہ ہوا کہ صحیح اور غلط میں نا تمیز مشکل ہو گئی,
بالکل,
کہ کتنا صحیح ہے مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث میں آ گیا اور کتنا ایسا ہے کہ جو ضعیف تھا جو ویک تھا جس کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے تھا, یا آپ کہہ لیں کہ جو شاید شیعیت کا اثر ہے جو ہمارے ہاں بھی آ گیا.
اچھا اچھا اچھا,
تو یہ بھی ہوا ہے,
بالکل ٹھیک. تو ایک سوال ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے, یہ بھی اگین پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اس کا کتنا ریلیونس ہے اس کے ساتھ, از ہی گوئنگ ٹو بی اے اسپیسیفک پرسن اور از ہی اے جنرل, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی امام مہدی کوئی بھی مہدی ہو سکتا ہے, تو اور ایک ہے کہ جی کوئی اسپیسیفک انڈیویجول ہے اس کا انتظار ہے.
ہاں دیکھیں, جو صحیحین کی روایات کا نیریٹو بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا صحیحین میں. جتنی بھی روایتیں تھیں جب میں نے ان کو دیکھا, کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اتھینٹک ترین روایات,
بالکل ٹھیک ہے,
اس سے آپ اپنا ایک پورا ایک امیج بنائیں, اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو اس کے اوپر پرکھیں,
بالکل ٹھیک ہے, صحیح.
تو صحیحین میں تو یہ چیز نہیں ملتی کہ جی کوئی خاص قسم کا ہوگا
اسپیسیفک انڈیویجول.
ہاں صحیحین, پہلی بات تو یہ کہ مہدی کا نام ہی نہیں ملتا صحیحین کی روایات میں, مہدی کا نام ہی نہیں ہے. مہدی کا نام آتا ہے سنن کی روایات میں. صحیحین کی روایات میں صرف رجل کے لفظ ہیں یا رجل من قریش, ایک بندہ ہوگا یا زیادہ زیادہ یہ کہ وہ قریشی ہوگا, اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کا کوئی لقب ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے مہدی تو بیسیکلی لقب ہے نا, مہدیین, تو ویسے تو یہ لقب کچھ اور لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے, جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ خلفائے راشدین ان کے بارے میں مہدیین کا لفظ آیا, ٹھیک ہے, مطلب گائیڈڈ پرسن. تو اس معنی میں مہدی کہہ دینا کہ وہ گائیڈڈ پرسن ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا صحیحین کی روایات میں یہ بھی ہے کہ مطلب کوئی اس کو تقدس کا لبادہ نہیں پہنایا گیا اس کی پرسنالٹی کو, اس لحاظ سے کہ کوئی بہت مقدس یا سیکرٹ پرسنالٹی ہے یہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا جو مہدی ہمارے سامنے آتا ہے نا, مہدی کا کانسیپٹ صحیحین کی روایات میں, وہ ایک قریشی آدمی ہے, صالح ہے, یہ بات
نیک
نیک آدمی ہے. اور دوسرا اصل چیز ہے نا, وہ ایک پولیٹیکل ریفارمر ہے.
اچھا
یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ اس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے, مطلب ریلیجس سے زیادہ, ریلیجس ریفارمر سے زیادہ وہ ایک پولیٹیکل
ریفارمر زیادہ ہے.
آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب امت جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس میں مبتلا ہوگی یا لیڈرشپ کرائسس میں مبتلا ہوگی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ اب یہ ان کا لیڈرشپ کا کرائسس ختم ہو. اچھا ایک اور بات بہت عام آتی ہے صحیحین کی روایات میں, اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کریں گے.
اچھا یعنی ہی مائٹ ناٹ بی اے پریکٹیسنگ انڈیویجول,
وہ ایک وہ نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حکمران ہوگا, ٹھیک ہے, بہت امکان ہے کہ وہ ایک حکمران جس کو لوگ فاسق و فاجر سمجھ رہے ہوں,
اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ کوئی انسیڈنٹ ہوا
ہے, بہت سے لوگ جو ہے
اور وہ
اس کی طرف آ جاتے
ہیں,
تو وہ کوئی شروع سے ایسا نہیں ہوگا.
اچھا اچھا
شروع سے ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ ہمارے سامنے ایک تو روایت ہے صحیح بخاری کی 2118, اس میں یہ بات ہے کہ ایک لشکر جو ہے وہ بیت اللہ پہ چڑھائی کرے گا, ٹھیک ہے, اور بیت اللہ پر چڑھائی کی نیت سے جب وہ آئے گا وہ دھنس جائے گا بیدا کے مقام پہ, بیدا کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور روایت ہے اسی طرح سے, وہ بھی صحیحین کی روایات ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جو قریش میں سے ہوگا وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا,
ٹھیک ہے.
اچھا اب لوگ کیا کریں گے, لوگ اس کا پیچھا کریں گے,
ٹھیک ہے,
بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے, اور رستے میں جو ہے جو اس کا پیچھا کرنے والے ہوں گے ان کو دھنسا دیا جائے گا. अच्छा, इससे ये लग रहा है कि कोई लड़ाई या झगड़ा हो रहा है जिसमें एक बंदे ने बैतुल्ला में जाके पनाह ले ली, ठीक है। अब उस लड़ाई झगड़े में, उस इख्तलाफ में कुछ लोग जो है वो एक लश्कर निकला है, और वो मुसलमानों का ही लश्कर है,
ठीक है, ठीक है।
वो मक्का की तरफ निकला है, और ये जो रजुल मिन कुरैश है इसने मक्का में पनाह ली हुई है। अब ये जब लश्कर उसको मतलब कत्ल करने की नीयत से निकला है तो ये रस्ते में धंसा दिया गया।
आपने कहा ये मुसलमानों का लश्कर होगा?
मुसलमानों का लश्कर होगा। अच्छा। और इसमें ये भी आता है कि ये वहाँ मशरिक की तरफ से आएगा।
अच्छा, तो ये कायदा हदीस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि मुसलमान, क्योंकि हम लोगों ने ये समझा
नहीं, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि मतलब इससे चूंकि आगे रवायत में आता है ना कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर सवाल किया।
अच्छा,
कि जी उस लश्कर के अंदर जो है वो उम्मत के भी लोग होंगे, तो आप सल्लम फरमाए हाँ,
अच्छा
हाँ उम्मत के लोग होंगे, तो फिर कहा गया कि वो सब के सब जब धंसा दिए जाएंगे तो उसमें नेको बद, तो आप सल्लम फरमाए हाँ नेको बद होंगे।
अच्छा।
लेकिन क्यामत वाले दिन उनको यब आतमुल्ला अलानी याते, उनकी नीयतों पे उठाएगा। यानी बहुत सारे लोग शुरू में कन्फ्यूज होंगे मेहदी की पर्सनैलिटी के हवाले से, यानी कुछ आप कह लें कि जी साले लोग भी उस लश्कर में शामिल हो जाएंगे या जिनकी नीयतें खालिस होंगी वो भी उस लश्कर में, जैसे मुसलमानों में जंगो जिदाल होते हैं ना,
होता है,
तो गलत फहमियां पैदा
हो जाती हैं। कोई नेक लोग भी एक साइड पे होते हैं, बुरे लोग भी उसे इकट्ठे
होते हैं, तो वो पूरा लश्कर तो धंसा दिया जाएगा। जिसमें ये भी कहा गया फीहिमुल मुस्तबसिर वल मजबूर, मुस्तबसिर यानी बसीरत के साथ जो मेहदी का पीछा करने वाला होगा वो भी होगा और मजबूर भी होगा और वबनु सबील भी होगा, सब के सब धंसा दिए जाएंगे और फिर क्यामत वाले दिन उन्हें उनकी नियत के मुताबिक उठाया जाएगा।
क्योंकि हम लोग ना आमतौर पर समझते थे कि ये लश्कर जो होगा नॉन मुस्लिम्स का होगा, या क्योंकि वो इमाम महदी के खिलाफ होगा तो डेफिनेटली कोई ऐसा नॉन मुस्लिम्स का जो है।
अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ ये बुखारी की ये जो ये है
इसमें वजाहत हो गई ना,
2884 इसमें अरबी में अल्फाज के हैं, इन्ना नासम मिन उम्मती या उम्मून बिल बैत बिराजुल मिन कुरैश, कि मेरी उम्मत के लोग क्या करेंगे, वो कुरैश के एक आदमी का पीछा करेंगे, कसद करेंगे, कद लजा बिल बैत, जिसने बैतुल्ला में पनाह ले ली होगी, यहां तक कि जब वो लोग बैदा के मकाम पे पहुंचेंगे खुसिफा बिहिम, तो उन सबको धंसा दिया जाएगा,
जमीन में धंसा दिया जाएगा।
तो ये जो लश्कर है ये आप सल्लम की उम्मत में से है।
उम्मत में से, ठीक है,
और बैतुल्ला में जिसने पनाह ली वो एक तो यह है कि रजुल मिन कुरैश है, बस इतनी, इससे ज्यादा कोई नहीं, कुरैशी होगा वो जिसने बैतुल्ला में पनाह ली है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास एक और रवायत आती है, ये भी सही मुस्लिम की है, 2913, कि आप सल्लम फरमाया कि क़यामत से पहले एक खलीफा आएगा जो लोगों को जो है वो लपें भर भर के माल देगा।
अच्छा,
इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी खिलाफत कायम हो जाएगी मेहदी की।
अच्छा,
यानी शुरू में इख्तलाफ हुआ। अच्छा, बहुत मुबहम सा कॉन्सेप्ट है, आप कह लें सही है, इनकी रिवायात में ऐसा नहीं है कि कोई तफसीली कहानी है, मतलब ये होगा ये होगा, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं बयान की गए, ऐसे नहीं, मुख्तलिफ रिवायात हैं जिसमें कुछ आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप जोड़ के कोई इमेज बना लें, ठीक। तो एक तो यह है कि मेहदी ने जो है वो मक्का में पनाह ली और लश्कर जो उसके ऊपर हमलावर होने वाला था वो सब का सब धंसा दिया गया ज़मीन के अंदर, और यही सबसे बड़ी अलामत होगी
कि ये वो मेहदी है,
ये वो मेहदी है, ठीक है, इस लश्कर का धंसा दिया जाना जो उसके ऊपर चढ़ाई करेगा। अब उसके बाद लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोग जो है ना उसकी बैत के लिए टूट पड़ेंगे, मतलब ऐसे लग रहा है। फिर यह है कि मेहदी की खिलाफत कायम हो गई। अब यह यहां जो अल्फाज आ रहे हैं ना कि वो खलीफा होगा मेरी उम्मत में, ठीक है, और जो लोगों को माल लपे जो है वो भर भर के देगा, यानी माशी खुशहाली उसके दौर में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये जो हम दरमियान में बातें कर रहे हैं ना, ये सुनन की रवायतों में, कुछ ज़ईफ़ रवायतों में ये चीजें आ गई हैं, उसको हम आगे चल के देखते हैं,
ठीक है, ठीक है,
मतलब जिसको हम
दरमियान में। अच्छा, कुछ ना ऐसे एक काबिल मुजम्मत शख्स की भी जिक्र आता है जो अरबों में से होगा, वो भी इससे रिलेटेड,
सुफियानी का तज़किरा भी आता है,
वो इससे रिलेटेड होगा या वो अलग इंडिविजुअल है?
नहीं, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, एक और रवायत है सही मुस्लिम की, 15503, उसमें यह है आप सल्लम फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम जो है उनका नुजूल होगा और तुम्हारे दरमियान जो इमाम होगा वो तुम्ही में से एक शख्स होगा,
ठीक है।
अच्छा, इसी चीज़ को सही मुस्लिम की एक और रवायत में मतलब ज़्यादा तफसील के साथ जो है वो वाज़ी किया गया है,
वो जब नमाज का पूरा,
हाँ हाँ, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फ़यकूलु अमीरुहुम, तो मुसलमानों का अमीर ये बात कहेगा। अब ये पॉलिटिकल लीडर है,
बिल्कुल ऐसे,
ठीक है,
फेयर इनफ,
ताल सल लना, कि आप आगे बढ़ें
और हमारे लिए नमाज
नमाज पढ़ें, फ़यकूलु ला, तो हज़रत ईसा कहेंगे नहीं, इन नबादकुम अलाबादिन उमरा तकरिमत अल्लाह हाज़िल उम्मा, अमीर आप ही हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो है वो एक फजीलत बख्शी है, तो हज़रत ईसा जो हैं अलैहिस्सलाम उनकी मेहदी कह लें ठीक है कोई हरज नहीं है, उनकी इक्तदा में जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे, बेसिकली वो पॉलिटिकल लीडर होंगे।
सही।
अच्छा, इससे एक और बात भी समझ में आती है, वो बात ये समझ में आती है कि हज़रत ईसा का भी जो रोल है वो भी पॉलिटिकल है, क्योंकि एक और रवायत में है, सही मुस्लिम सही इनकी रवायात में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी करेंगे, यानी नई शरीयत तो लेके नहीं आएंगे। तो मतलब यहाँ वो वाला उनका रोल नहीं है कि जैसे किसी नबी का रोल होता है कि हलाल और हराम मुकम्मल हो गया।
ऐसे ही
जब हलाल और हराम मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, कानून मुकम्मल है, तो अब रोल कौन सा बाकी रह गया?
पॉलिटिकल,
सिर्फ पॉलिटिकल
लीडरशिप का,
बेसिकली लीडरशिप का रोल है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी वही है और मेहदी का भी वही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये तो है, मतलब सही है इनकी रिवायात में बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा नहीं।
डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे देखें थोड़ा सा, एक बाकी चूँकि ये दो चीज़ें, दो लीडर्स हैं हमारे पास, एक इमाम महदी का तस्वर आ रहा है हमारे सामने और इस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। अब ये दोनों लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें ये फील होता है जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद फिर जितनी हमें आगे वाकयात मिलते हैं पोस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम के, यानी उनके नज़ूल के बाद के, तो उसमें हम देखते हैं कि नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब लीडर तौर पर नज़र आ रहे हैं, इमाम महदी नज़र नहीं आ रहे।
वो नहीं,
इसका मतलब है कि उनकी लीडरशिप बस यहीं तक होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लीडरशिप चली जाएगी,
फिर उसके बाद
रोल यहीं तक।
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो वक्त और दूसरा जगह, यानी ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस क्या है महदी का। देखें, महदी का जो वक्त है ना वो है नुज़ूल ईसा इब्न मरियम के बिल्कुल साथ,
ठीक है,
ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब उसके फ़ौरन बाद नुज़ूल ईसा इब्न मरियम है, वो अभी लीडर ही हैं तो हज़रत ईसा इब्न मरियम का जो है वो नुज़ूल हो गया और उम्मत को वो लीड कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि उनका जो ज़ुहूर हो रहा है ना वो मक्का में हो रहा है, बैतुल्ला में।
बिल्कुल ठीक है,
बैतुल्ला में हो रहा है, यानी ये नहीं यहाँ पाकिस्तान के किसी गांव था में उनका कोई ज़ुहूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
और वो बंदा अरबी है, कुरैशी है।
हाँ, कुरैशी है,
कुरैशी
है, और गालिब गुमान यही है कि अरबी और नस्ल ही होगा, गालिब गुमान यही है, मतलब अल्फाज नहीं आते लेकिन गालिब गुमान यही लगता है कि मक्का में होगा, तो इससे यही लगता है।
जब हम कुरैशी कह रहे हैं तो उससे फिर हम यही तो एज्यूम नहीं कर रहे कि वो अरबी ही होगा, क्योंकि लोग बकायदा आगे, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से, खानदान से होगा, वो सारी तफसीरात जो बताते हैं लोग, तो पाकिस्तानी
सैयद भी हैं या इसी तरह से अलवी भी हैं या कुरैशी भी हैं या हाशमी भी हैं, वो अब उर्दू स्पीकिंग भी तो हैं, मतलब हमारे यहाँ भी तो
क्या है? वो जेन्युइन है ये एक अलग बहस है
एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल इतना नहीं है, हैं हमारे यहाँ भी हैं जिनके पास शजरे हैं अल्लाह के रसूल से सलम तक कि वो हसनी है,
हो सकता है वहाँ से आगे हों और उसके बाद उनकी अरबी भूल गए हों।
तो सैयद की रिवायात में एक तो यह है कि कोई मेहदी नहीं है, बस सिर्फ रजुल मिन कुरैश के अल्फाज हैं कि एक कुरैशी होगा बस, और दूसरा यह है कि मुसलमानों का अमीर होगा, और तीसरा ये कि बैतुल्ला में जो है वो पनाह लेगा, और चौथा ये है कि उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसका पीछा करने वाला लश्कर पूरे का पूरा ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, और पांचवा ये है कि हज़रत ईसा के बिल्कुल मुत्तसिल साथ होके आएगा। अब हम जब आते हैं सुनन की रिवायात की तरफ तो फिर जो है ना मामला थोड़ा उलझता है, ठीक है। इनमें से बाज़ रवायात सही हैं, बाज़ ज़ईफ़ हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि बाज़ जो सही भी हैं ना उनके ऊपर खैर कलाम है, वो सही का मतलब भी यही है कि उनके ऊपर, रावियों के ऊपर कलाम है। इनमें से कोई रवायत, मतलब आप नहीं कह सकते कि जी ये ऐसी सही है कि जैसे सही है
बुखारी और सही मुस्लिम,
ऐसी नहीं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली रवायत जो है ना हमारे सामने है, इसमें अलामा अल्बानी ने इसको सही कहा हुआ है,
ठीक है,
लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं कि ठीक नहीं है। अब इमाम बुखारी का एक बड़ा मकाम है, ठीक है, इसमें एक रावी है ज़ियाद बिन बयान उसके बारे में। तो जब हम उसमें तफसील में जाते हैं ना सुनन की रवायतें, हो सकता है कि अलामा अल्बानी और आज करके मुआसिर मुहक्किकीन उसको सही कह रहे हों, लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन ना उस पर कलाम करते हैं, जैसे इसके बारे में इमाम बुखारी ने कहा हुआ अलैहि रहमा कि फी इसनादी नज़र, बहुत बड़ा जुमला इमाम बुखारी
का मशहूर है।
अच्छा, ये रवायत क्या है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि मैंने अल्लाह के रसूल से सल्लम से सुना कि मेहदी जो है वो मेरी औलाद में से होगा और फातिमा की औलाद में से होगा, यानी फातिमी होगा।
अच्छा, फातिमी होगा,
ठीक है, एक तो ये। अच्छा, इसी तरह जो है मतलब फातिमी होगा। इसके बाद एक दूसरी रवायत है सुनन अबी दाऊद की 4285,
ठीक
है, उसमें यह है कि आप सल्लम फरमाए कि मेहदी मुझसे है, अल मेहदी मिन्नी, मतलब वही मेरी औलाद से, यह हज़रत अबू सईद खुदरी से। और दूसरी चीज़ ये बयान की गई कि ज़मीन को अदलो किससे भर देगा। अच्छा, ये बात सही है, इनकी रिवायात में भी मिलती है कि मेहदी के आने का मकसद यही होगा कि अदलो किससे भर जाएगा, माशी खुशहाली हो जाएगी, اس قسم کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. یہاں ایک اضافی بات آ گئی کہ 7 سال تک وہ حکومت کرے گا.
اچھا
اچھا, لیکن اس میں بھی مطلب اس کے اندر ایک راوی عمران القطان, اس کے بارے میں کلام ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور روایت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے سنن ابی داؤد کی, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہے رجل من اہل بیتی, وہ میرے خاندان میں سے ہوگا. اور پھر آگے وہی بات ہے کہ جی, لیکن اس میں بھی ایک راوی ہے فطر بن خلیفہ, اس کے اوپر کلام ہے. اچھا, سنن کی جتنی روایات میں نے دیکھی ہیں نا, مطلب کہ کیا وہ مطلب سب کا اتفاق ہے کہ وہ اوتھینٹک ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک,
اچھا
ایسا نہیں ہے, ان کے راویوں پہ کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے,
یعنی اسکالرز کی کچھ ریزرویشن.
ہاں, اس لیے آپ اگر اس طرف جاتے ہیں نا کہ جی یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ مہدی جو ہے وہ فاطمی ہوگا, یا مہدی جو ہے, بلکہ آگے چل کے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یواتیو اسمہ اسمی, یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا,
محمد ہوگا.
اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یواتیو اسمہ اسمی واسم ابی ہی اسم ابی,
وہی محمد بن عبداللہ جیسا.
ہاں, مطلب اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. اور اچھا, اس کو بھی علامہ البانی نے حسن کہا ہے. اچھا, یہاں تک تو اگر آپ جائیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کو معاملہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہے نا, ان کے ہاں ان کے جو 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری, یعنی ان کا نام ہے محمد بن حسن,
ٹھیک ہے,
وہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو مہدی کے بارے میں اگر آپ نام کے تعین کہ وہ مطلب فاطمی ہوگا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ, تو وہ اہل تشیع کے 12ویں امام نہیں ہو سکتے,
ٹھیک ہے,
جو امام غائب ہیں. کیونکہ اہل تشیع کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام جو کہ غائب ہو چکے ہیں
وہ اصل میں امام مہدی ہیں,
وہ امام مہدی ہیں, اور ان کا نام محمد بن حسن ہے,
ٹھیک ہے,
محمد بن عبداللہ نہیں ہے. وہ اہل تشیع عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں بھی تو مہدی کا ذکر ہے نا,
ایسے ہی,
ہاں, تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے, تو اسی کو تو مان کے تو آپ کا انکار کرتے ہیں. ابن تیمیہ وغیرہ نے علیہ رحمہ ان چیزوں کو کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ دیکھیں آپ کا معاملہ تو ہم سے یہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک اور روایت میں ہے, وہ بھی سنن کی روایت ہے, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہے نا وہ حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہ حضرت علی سے بلکہ روایت ہے, کہ ان نبنی ہذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ بات اور بھی روایات میں آتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وسیخرج من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم, ٹھیک ہے, یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق ثم ذکر قصہ یمل الارض عدلا, یعنی مہدی جو ہے نا وہ حسن کی اولاد میں سے آئے گا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. میں نے کہا کہ سنن کی روایات میں باہر الاختلاف ہے, کلام بھی ہے, کوئی ضعیف کہہ رہا ہے, کوئی صحیح کہہ رہا ہے, آپ صحیح بھی مان لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی سنن کی روایات کو سامنے رکھیں تو دو نیریٹو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک نیریٹو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ جی مہدی جو ہے وہ فاطمی ہے اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے, اور تیسرا یہ کہ وہ حسنی ہے,
ٹھیک
ہے, آپ نیریٹو. اچھا, اگر آپ یہ نیریٹو بناتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ مہدی گزر چکا ہے.
اچھا,
ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن,
ٹھیک ہے,
یہ حضرت حسن کے, آپ کیا لیں, حضرت حسن کے بیٹے تھے حسن, ان کے بیٹے تھے عبداللہ, اچھا, ان کے بیٹے تھے محمد, جو نفس زکیہ کے نام سے معروف ہوئے, اور انہوں نے بنو عباس کے خلاف بڑے خروج کیے تھے.
اچھا اچھا اچھا,
تو یہ ایک پاسبل, اچھا, وہ کہتے بھی تھے اپنے آپ کو مہدی,
اچھا,
ہاں, انہی روایتوں کی وجہ سے, اور ان کے سارے فالوورز ان کو مہدی سمجھتے تھے. اچھا, وہ اہل تشیعوں میں ایک معروف سیکٹ ہے پورا.
اچھا,
ٹھیک ہے, ایون کے جو زیدی ہیں آج کل, حوثی جنہیں یمنی کہتے ہیں, وہ ان کو امام بھی مانتے ہیں. حوثیوں کے جو امام ہیں نا, جیسے ٹویلورز, یسنا اشریہ, ان کے 12 امام ہیں, تو اسی طرح ان کے بھی اپنے امام ہیں, انہوں نے اس میں وہ ان کو بھی
شمار کرتے ہیں,
محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کو. لیکن ان کے حوالے سے ایک پورا شیعہ سیکٹ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو انہیں کو مہدی سمجھتا تھا,
ٹھیک ہے.
تو پھر یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ روایتیں آئی ہوں,
ٹھیک ہے,
کہ وہ حسنی بھی تھے, محمد بن عبداللہ, یعنی یہ ساری روایتیں ان کے اوپر فٹ بیٹھ رہی تھیں, اور انہوں نے یہ کیا بھی, اور انہیں اس کا احساس بھی تھا, اور انہوں نے کلیم بھی کیا, اور ان کے فالوورز نے بھی اس کو, ہاں, یہ ہے کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کی تعویل یہ مطلب کی جا سکتی ہے کہ جی اصل میں یہ تھا کہ ان کا ساتھ دو تو तो वो अदल व इंसाफ के साथ जमीन को क्या करेंगे, भर देंगे।
ये लेकिन अगर तुमने साथ ना दिया तो फिर नहीं करेंगे,
फिर नहीं,
यानी कंडीशनल था,
कंडीशनल था। लेकिन ये है बहरहाल सुनन, सुनन
जैसे आपने डॉक्टर साहब वो बात की ना, हज़रत ईसा अलैहि सलातो वसलाम जो एक मेन आपने मतलब ये क्वालिटी उधर नहीं मिल रही कि हज़रत ईसा अलैहि सलातो वसलाम के फौरन बाद उनका जमाना है।
हाँ, फौरन।
तो यहाँ पे अब जरा डिफरेंस आ गया, ज़ाहिर है ईसा अलैहि सलातो वसलाम, अनलेस के हम माने कि हज़रत ईसा भी आगे जा चुके
नहीं, कुछ लोगों ने तो ऐसा किया ना। अब देख, जैसे देखें एक और रवायत है, बल्कि बड़ी अजीब रवायत है, सुनन इब्ने माजा की। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने, अल्लाह उन पर रहमत करे, उन्होंने इस रवायत को बड़ा जो है ना फोकस किया मेहदी के बारे।
अच्छा
अच्छा, ये रवायत, ये वैसे अल्लामा अल्बानी ने कहा ज़ईफ़ रवायत है। वो कहते हैं रवायत में यह सुनन इब्ने माजा की 4039 वलल महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम।
ओ अच्छा,
मेहदी कोई और शख्सियत
नहीं, ईसा इब्न मरियम ही है,
ईसा इब्न मरियम ही मेहदी है।
अच्छा, यानी हम वी आर नॉट लुकिंग एट द राइट इंडिविजुअल।
मतलब ये दो शख्सियतें नहीं है,
ये तो मिथ बस्टर हो गया पूरा।
यहाँ से कुछ लोग इस तरफ भी चले गए, कुछ लोग इस तरफ चले,
ये अलग इंडिविजुअल नहीं है, हज़रत ईसा अलैहि सलातो वसलाम,
उन्हीं को जो है वो मेहदी कहा गया
इस हदीस की बुनियाद पे,
इस हदीस की बुनियाद पे, ठीक है। यानी मेहदी के नाम से जितनी भी रिवायतें आई हैं ना, वो सारी ईसा इब्न मरियम के बारे में, बाकी राजुल मिन कुरैश वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। फ़काल अमीर, उनके अमीर ने कहा भाई, जो उस वक्त अमीर होगा भाई आके नमाज पढ़ाएं, तो ठीक है,
नहीं कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल नहीं है,
स्पेसिफिक
जनरलाइज कर दिया,
जनरलाइज कर,
लेकिन ईसा अलैहि सलातो वसलाम पे यह हदीस फिट कर दी।
हाँ
अच्छा ठीक है,
तो ये भी एक हमारे यहाँ नैरेटिव जो है वो बिल्ट हुआ कि दी। अच्छा, फिर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब तो इस तरफ निकल गया है कि बेसिकली ईसा इब्न मरियम भी कोई शख्सियत नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है।
अच्छा,
जो अल्लाह के नबी और रसूल थे उन्होंने दोबारा दुनिया में नहीं आना। ईसा इब्न मरियम से मुराद भी यही है कि एक शख्स होगा, एक कोई आम शख्स है, लीडर है, जिसके अंदर ईसा इब्न मरियम की
क्वालिटीज़
होंगी, सिफात होंगी, और वो सिफात ये हैं कि जैसे वो अमन के पयाम्बर थे, अलम्बरदार थे, क्योंकि उनके बारे में हमें किताब मुकद्दस में भी मिलता है कि जी बंदा अगर तुम्हें एक तरफ थप्पड़ मारे चेहरे के तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो इधर भी मार लो, तो ये वो थे। और वो सारी ज़िंदगी खुद भी चूँकि अमन की और आपस में मिलजुल के रहने की तलकीन करते रहे, उसके एक तरह से एम्बेसडर रहे, और उन्हें उसका एहसास भी था, तो इशारे किनायों से या बल्कि बड़े सरी अंदाज में वो अपनी तरफ इशारा करते हैं कि वो मैं ही हूँ।
अच्छा, यानी वो ईसा जो है,
ईसा या मेहदी, वो मैं ही हूँ।
अच्छा,
वो इस तरह से कि वो जितनी भी सिफात वो बयान करते हैं, क्वालिटीज, लेकिन वो नहीं मुराद लेते, नबी मुराद ही नहीं ना लेते, ये बात हाँ, हमारे
यानी वो एक मुबल्लिग, एक मुबल्लिग या फिर एक यानी एक मुजद्दिद कह दें,
हाँ,
एक मुस्लिह कह लें, रिफॉर्मर टाइप कोई।
हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि मेहदी और ईसा को एक आम आदमी बनाया ना, कि इससे मुराद वो नहीं है तुम्हारा कोई मजहबी खास किस्म की कोई जो है वो कि आसमानों से उतरेंगे, ये वो मुराद नहीं है, ठीक है। मतलब हर चीज़ की उन्होंने, जैसे वो आता है ना कि जी हदीस में कि जी हज़रत ईसा इब्न मरियम का जब नुज़ूल होगा तो वो जो जामिया मस्जिद है दिमश्क की, उसके मनारे के ऊपर उनका नुज़ूल होगा, तो उन्होंने कहा कि जी असल में इससे मुराद जो है वो एज ऑफ एविएशन है, ठीक है।
अच्छा।
वो चूंकि हर एयरपोर्ट के ऊपर एक मनारा होता है ना, तो वो मतलब वो उस जमाने में आएंगे,
वो जहाज में आएंगे
उस जमाने में, मतलब वो जहाज में सफर करेंगे, ये मुराद
थी।
तो वो इस तरह से मेटाफर इस्तियारा करके उन्होंने हर चीज की तावील कर दी, हर चीज की तावील कर ली, और एक आम आदमी जो है वो के तौर पे उसको पेश किया। फिर उसके बाद कहा कि जी अब ये जो सारी सिफात हैं तो ये तो मुझ में और हमारी टीम के अंदर पाई जा रही हैं,
तो आप इनको सपोर्ट करें
इनको सपोर्ट करें। हाँ, वाक्य था ना, यही
बात,
खुलासा यही था, खुलासा यही था
जी जी।
तो खैर, बहरहाल तो हम ये बात कर रहे थे कि मेहदी के बारे में एक तो नैरेटिव हमें सही ऐन से मिलता है और एक हमें सुनन से मिलता है। अब सुनन में जो नैरेटिव डेवलप होता है ना, भले तो आप उसको मान लें और भले तो आप उसको ना माने, अच्छा मेरा जहन क्या कहता है, मैं तो इस तरफ देखता हूँ कि भाई सही ऐन से एक नैरेटिव बन गया, अब अगर सुनन का नैरेटिव उसको सपोर्ट कर रहा है ना, एलोबरेट कर रहा है, तो फिर ठीक है उसको आप ले लें, और अगर उसको एलोबरेट नहीं कर रहा है, एक पैरेलल नैरेटिव जनरेट हो रहा है, तो फिर उसको ना लें। अब जैसे देखें रजुल मिन कुरैश, रजुल मिन कुरैश के अल्फाज काफ़ी हैं, और मुझे यही लगता है कि ये रजुल मिन कुरैश होगा, कुरैशी होगा, और इससे ज़्यादा नहीं है, उसको फातमी बनाना मेरा दिल इस तरफ माइल नहीं होता। लेकिन अगर कोई कहता भी है तो चलें ठीक है, कुछ उलमा ने उसको सही कहा है,
ठीक है,
वो कहते हैं कि जी वो फातमी है, हसनी है, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है,
आप बना लें,
बना लें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक रवायत आती है जिससे हमें लगता है कि सैयन के नैरेटिव को वो बहुत खुल के बयान कर देती है।
अच्छा
ठीक है, लेकिन इस रवायत को अलामा अल्बानी ने ज़ईफ़ कहा हुआ है। अब ये मसला भी आ जाता है 4286। अच्छा, ये रवायत क्या है?
ये किस किताब की?
ये सुनन अबी दाऊद की है।
सुनन अबी दाऊद,
सुनन अबी दाऊद में पूरा चैप्टर है किताबुल महदी।
अच्छा,
उन्होंने महदी पे काफ़ी रवायतें वो लेके आए। ये हजरत उम्मे सलमा से है कि आप सल्लम ने फरमाया कि एक खलीफा जो है ना उसकी वफात होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अरब वर्ल्ड में अरब की दुनिया में कोई बादशाह फौत होगा।
ठीक है,
फिर ये होगा कि अहले मदीना से एक आदमी भागेगा, मदीना से एक आदमी भागेगा और मक्का में जाके पनाह लेगा।
ठीक है,
ठीक है। अच्छा, सैयान की रवायात में सिर्फ पनाह लेने का, मक्का में पनाह लेने का जिक्र है। यहाँ ये तफसील आ गई कि वो मदीना से भागा है
मक्का की तरफ
और मक्का में जाके उसने पनाह लिया और पीछे किसी खलीफा की मौत हुई है और खलीफा की मौत के बाद झगड़ा पैदा हुआ है।
अच्छा,
कि कौन खलीफा बने। अच्छा, अब लोगों का दिल उसकी तरफ मायल है और वो चाहता नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ, ये जो चाहते हैं ना कि हम मैथी बने।
हाँ। जबरदस्ती बनना चाह रहे हैं।
देखिए, जिसको अल्लाह ने बनाना है ना, तो ये बात समझ में आती है कि वो नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं मेहदी हूँ, जिसको अल्लाह ने बनाना है। ठीक है, उसके अंदर उसकी तलब नहीं होगी। बल्कि आप सल्लम का भी मामला यही था कि आप सल्लम उसको ओहदा नहीं देते थे
जो तलब करता,
जो तलबगार होता था।
बिल्कुल ठीक।
और मतलब हमारे दीन का भी मिजाज यही है। बल्कि सही बुखारी की एक रवायत भी है कि आप सल्लम फरमाया कि ओहदे उन्हीं लोगों को दो कि जो उसके तलबगार ना हो। तो खैर, बहरहाल ये खलीफा की मौत हुई, उसके बाद इख्तलाफ हुआ किसको बनाना चाहिए, तो लोगों का जहन इनकी तरफ मायल है, तो ये जान छुड़ा के मदीना से भागे हैं और मक्का में जाके पनाह ली, यार मेरी जान छोड़ो, मैं इसका अहल नहीं हूँ। ठीक है, कि आप मुझे खलीफा बनाओ, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर बनाओ अपना इन हालात में। लेकिन लोग उसके पास आएंगे और उसे कहेंगे आप इमाम हैं, और वो इसको नापसंद करता होगा। ये बाकायदा मतलब अल्फाज हैं, फयातीहि नासु मिन अहलि मक्का फयुखरिजूनहु व हुवा कारिहुन, यानी वो कहेंगे तुम बाहर निकलो, तुम लीड करो, और वो इसको नापसंद कर रहा होगा कि नहीं, मैं इस
लीडरशिप को उसको फोर्स करेंगे कि आप लीडरशिप, या फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश
करेंगे
कि आप लीडर बने, आप लीडर बने,
आप आगे निकलें, आप इसके अहल हैं। ठीक है, लेकिन वो इसको नापसंद कर रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद लोग क्या करेंगे कि फयुबायूनहु बैन रुकन वल मकाम, रुकन और मकाम के दरमियान उसकी बैत करेंगे। ठीक है, वहाँ बैतुल्ला में। ये बात हमें सैयान में भी मिलती है कि वहाँ भी। फिर उसके बाद आगे उसी का जिक्र है जिसका सैयान की रवायात में था कि उनकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। अब यहाँ पे तफसील ये आ गई, वयुबस इलैहि बासु मिन अहलि शाम, ये शाम की तरफ से लश्कर आएगा। ठीक है, आगे क्या है, फयुक्सफु बिहिम बिल बैदा, वही बात आ गई कि बैदा के मकाम पर वो लश्कर जो है वो धंसा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जब लोग देखेंगे ना, फ़ैदा रान्नास ज़ाले, कि यार इतना बड़ा लश्कर धंसा दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जितने भी जो है वो शाम के और इराक
मुखालिफीन जो भी हैं,
हाँ, जो बड़ी तादाद में लोग होंगे या नेक और साले लोग, वो सारे उसकी बैत के लिए टूट पड़ेंगे, सारे आ जाएंगे।
यानी एक साइन होगा। हाँ। यानी एक मुखालफत कुछ लोगों ने बनाया, लोग कंफ्यूज हैं, भी
कंफ्यूज हैं,
और एक लश्कर आया और उसने शायद इसीलिए कि एक बंदे ने क्लेम किया, तो हाँ। कोई हाँ। उसको उसकी लीडरशिप को चैलेंज करने वालों का एक लश्कर आया होगा गालिबन अहले शाम से, और उनको धंसा दिया गया, तो लोगों ने एकदम जो है हाँ। चाहे वो मुखालिफ है, चाहे
इसके साथ तो अल्लाह की मदद है,
अल्लाह की मदद,
इसके साथ तो अल्लाह की मदद है, और ये जो इस तरह से अनहोनी हो रही है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अलामत है कि इसके साथ अल्लाह ताला खड़ा है। तो लोग जो है ना, वो फिर जो कन्फ्यूज भी होंगे, वो सारे जो है उसके हक में। तो अब गोया कि आप यूं कह सकते हैं कि मेहदी जो है ना, हमारा सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस में सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम इस वक्त 60+ जो है वो नेशंस के अंदर तकसीम है। तो मेहदी की वक्त में ये भी बात रवायतों में आता है, अगरचे रवायतें ज़ईफ़ हैं, कि तीन बड़े ग्रुप्स बने होंगे जो आपस में मुसलमानों के लड़े होंगे, तीन बड़े। जैसे आप कह सकते हैं कि जी एक शिया बेल्ट है, एक सुन्नी बेल्ट है, हो सकता है एक और कोई दरमियान में से निकल आए। ठीक है, वो तुर्कों की निकल आए या सलफियों की निकल आए या कुछ भी निकल आए, ठीक है, बहरहाल उस वक्त जो है, या अफगानियों की निकल आए। तो कुछ इस किस्म का मामला होगा कि तीन ग्रुप्स होंगे जिनकी आपस में जो है वो जंग चल रही होगी।
अच्छा,
उसमें फिर जो है ना वो मेहदी का। अब ये सब कुछ हमें इन हालात में लग तो रहा है कि अचानक कोई, आप कह रहे कि जी आग भड़क उठती है, तो लगता है कि जी जैसे ईरान और पाकिस्तान का जो मामला होने लगा था, ईरान ने जो हमारे यहाँ मिज़ाइल फेंक दिए पाकिस्तान में, फिर ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है आर्मी चीफ साहब के बयान की वजह से, फिर उस तरह हम देख रहे हैं कि हौसियों का जो मसला हुआ, ठीक है, इसी तरह से जो है वो लबनान वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया फिलिस्तीन की जंग के अंदर। तो इसी तरह ईरान ने जो है वो मिसाइल दे मारे वहाँ शाम में भी, और इराक़ में भी जो है वो मतलब मिसाइल दे मारे। तो ये कुछ हालात ऐसे लग तो रहे हैं कि हो सकता है कि ये जंग की आग जो है वो भड़क उठे। और मेजर साइंस में ये भी बात आती है क़यामत के कि जी यमन से एक आग निकलेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी,
बिल्कुल ऐसे
मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर एक जंग चल पड़ी ना, तो ऐसे लगता है कि इस वक्त सारे इतने तपे बैठे हैं कि ये तस्बीह की तरह मामला है कि अगर एक दफ़ा धागा टूट गया ना, तो ये जिस तरह तस्बीह के दाने तेज़ी से गिरते हैं ना, तो इस तरह से ये सारी कौमें जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगी। मतलब रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमरीका हो गया, बर्तानिया हो गया, मतलब किसी एक से कुछ हो सकता है अचानक कि ऐसी गलती हो और उसके बाद ये सारे कूद पड़े।
जंगे
ये
अजीम
हाँ, ये
आप क्या
सब
समझते
ये
हैं?
नज़र आ रहा है वैसे, और लोगों को भी
जी
नज़र आ
जी
रहा है
ऐसे,
कि, और
और
इसी वजह
इसीलिए
से
लोग
वो
सवाल
अब
कर रहे हैं कि
हाँ
वो शायद अभी टाइम आ गया कि नहीं आया, एग्जैक्टली जिस मैंने शुरू में
देखिए,
कहा था।
बड़ी सुपर पावर इसलिए अवॉइड भी करती हैं, मतलब दूसरे जो अगर उसको प्रोवोक भी करते हैं, जैसे वो अभी कह रहे हैं ना कि कुछ 3-4 अमेरिकन मारे गए हैं सूडान में, और ईरान ने मारे हैं ड्रोन के ज़रिए से, ठीक है। अब वो शुरू में तो उनके बड़े बयान आए कि हम ईरान पे हमला करते हैं, लेकिन बहरहाल संभल संभल के वो भी चल रहे हैं कि अचानक ही ये जो है ना भड़क सकता है, मतलब
मामला
कोई
सीरियस हो
हाँ
सकते हैं,
सीरियस हो सकते हैं
जैसे
और
अभी
कुछ भी हो
फलस्तीन
सकता
के
है।
मामले में इट वाज नॉट
फलस्तीन
एक्सपेक्टेड कि इतना
हाँ,
बड़ा मसला
इतना
होगा,
बड़ा मसला हो
इतने मुल्क
जाएगा,
इन्वॉल्व हो
हाँ
जाएंगे।
इतने मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो सकता है कि अचानक ये हो, और फिर जब सीरीज शुरू हो गई तो फिर ये सारा कुछ मामला शुरू हो जाएगा, ग्रुपिंग भी हो जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखा है। फिर शायद हो सकता है कि चीज़ें जो है वो निखर के हमारे सामने आ जाए, लेकिन यहाँ पे वो तफसील आई है कि फिर उसके बाद क्या होगा कि वो लश्कर धंसा दिया जाएगा, फिर लोग उसकी बैत करेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ जो भी मुसलमानों में से कुछ और भी ग्रुप बने होंगे वो लड़ाई करेंगे, तो वो मगलूब हो जाएंगे। गोया कि एक आदमी है जो कि मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करेगा और उनको लीड करेगा, फिर उसके बाद ये भी रिवायत में अल्फाज हैं कि 7 साल तक उसकी हुकूमत रहेगी, फिर उनकी वफात होगी और उनके ऊपर जो है वो मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ेंगे। लेकिन ये 7 सालों के दौरान ही आप कह लें कि जी, जब आप यूँ कह लें कि जी ये एक नशत सानिया है मुसलमानों की, ठीक
यानी
है,
उसमें कहा ना, जैसे अदल से भर देंगे पूरी
हाँ अदल
दुनिया।
से भर देंगे, दोबारा मुसलमानों का उरूज होगा, ठीक है, कम अज़ कम मुस्लिम उम्मा का उरूज होगा, और बहुत बड़ी कुछ सल्तनत खड़ी करेंगे मेहदी जो है वो आके मुसलमानों की, और
सही
7 साल
है।
तक हुकूमत करेंगे, माशी खुशहाली बहुत आम हो जाएगी। अब ऐसे में अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने आजमाइश बनाया, दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाह रहा था, अच्छा वो आपने कहा, देसी को कनेक्ट कर लेते हैं, क्या ये हम नैरेटिव बना सकते हैं कि हजरते, जैसे उन्होंने आपने कहा ना कि उनकी 7 साल हुकूमत रहेगी और उसके बाद वो वफात पा जाएंगे, फौत हो जाएंगे, क्या हम ये कर सकते हैं कि, यानी ये क्या नैरेटिव की इसकी कोई गुंजाइश निकलती है कि हजरत इमाम महदी जो हैं उनका टाइम पीरियड हजरत ईसा के करीब नहीं है, यानी वो आए, वो आके रुख्सत हो गए, उसके बाद जो लश्कर हमें नज़र आ रहा है, जो लश्कर, जो अमीर जो होगा मुसलमानों का, जो हजरत ईसा अली सलातो वसलाम आके, हो सकता है वो अमीर वो ना हो, ये मुमकिन हो सकता है
ये
इसमें?
पॉसिबिलिटी हो सकती है,
ठीक
बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, ये बहरहाल ये भी एक बात समझ में आती है कि उनके होते हुए जो है अब यूँ भी कह सकते हैं कि शर की ताकतें भी हरकत में आ जाएंगी,
ठीक
या अल्लाह
है,
ताला ने चूँकि दुनिया को दार आजमाइश
बिल्कुल
बनाया,
ऐसे ही
तो सुकून तो अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा है, तो दज्जाल का ज़ुहूर हो
दज्जाल
जाएगा।
का ज़हूर होगा।
अब दज्जाल जो है ना वो संभाला नहीं जाएगा मुसलमानों से, ठीक है, दज्जाल नहीं संभाला जाएगा, या मेहदी और उनके साथ जो लश्कर है उसका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असल में नुज़ूल होगा दज्जाल के खात्मे के लिए, और उनका जो रोल हमारे सामने आता है वो यही है कि वो आके सबसे पहले जो है वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। तो बहरहाल ये एक हमें नज़र आता है। अच्छा, अहले तशय्यु के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना मेहदी का, वो सारा जो है वो एक सेक्रेट पर्सनैलिटी, मुकद्दस पर्सनैलिटी, चूंकि उनके यहाँ
मासूम।
हाँ इमाम का कॉन्सेप्ट यही है कि वो इनोसेंट होता है, मासूम होता है, और दूसरा ये कि उसकी इताअत फ़र्ज़ होती है, मुफ्तरज़ुत्ताअ होता है, वो मंसूस होता है यानी अपॉइंटेड होता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। यहाँ हमारी हदीसों से ये बात सामने आ रही है कि वो अपॉइंटेड नहीं है, वो चुना हुआ है, इलेक्टेड है, मतलब लोगों ने उसका इंतखाब किया है,
ठीक
लोगों ने
है,
उसकी बैत की है, लोगों ने उसको इस काबिल समझा है कि भाई ये इस वक्त जो है वो ये सलाहियत रखता है कि हम इसको जो है वो अपना इमाम और अपना जो है वो लीडर बना सकते हैं। मतलब इमाम मेहदी कोई दावों से नहीं मेहदी बनेगा कि जी मैं ये बताना शुरू कर दूं कि जी मुझे ये ख्वाब आते हैं, मैं
या
मेहदी हूं।
मैं वो
हाँ
प्रोफेसी के मुताबिक वो बंदा हूँ जिसने आना
हाँ
था
जिसने
और मैं आ
आना,
गया
हाँ
हूँ।
मैं आ गया,
नहीं,
ये
एक
नहीं होगा,
नेचुरल, एक नेचुरल हालात ऐसे बनेंगे कि
हालात ऐसे बनेंगे,
एक बंदा है और लोगों को समझ आई कि यार ये वो बंदा है जिसने, जो वाकई इस काबिल है कि उसके ऊपर,
हमारे
और फिर
मसाइल हल कर सकता
और
है।
उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली और साथ अल्लाह की ताईद भी आ गई वहाँ पे।
हाँ, अल्लाह की ताईद भी आ गई, और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला उसकी एक दिन में इसलाह करेंगे, और वो होगा भी कोई बज़ाहिर ये महसूस होता है कि रजुल मिन कुरैश मुराही की किसी रॉयल फैमिली से होगा, यानी उसका कोई बैकग्राउंड होगा ना, लोग ऐसे उठ के जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है उसको कोई लीडर थोड़ा बना देंगे।
सही,
मतलब जिसका कोई लीडरशिप का बैकग्राउंड होगा अल्लाह ताला उसकी एक रात में कोई इस्लाह करेंगे, और वो हो सकता है कि जी वो इन चीज़ों से भाग रहा हो कि यार नहीं मैंने अब इसमें नहीं जाना,
लेकिन लोग उसको कहेंगे नहीं यू आर द रिसीविंग वन।
तो वो उसकी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी कि लोग उसका इंतखाब करेंगे, बजाय इसके कि जी वो लोगों के सामने क्लेम करके और लोगों से मांगे कि जी मुझे इक्तदार दे दो। यानी मंगता हमारे यहाँ जो है, जो फ़कीर है इक्तदार मांग रहा है तो उसको जो है, अब अभी तक तो मेहदी का दावा ऐसे लोग
ऐसे कर रहे हैं
जो मांगते हैं
बिल्कुल
इक्तदार के मांगते हैं।
एग्जैक्टली,
तो वही तो पोलिटिकल पार्टीज कर रही हैं,
फ़र्क नहीं हुआ।
ये गलत है मेरे ख्याल में इस तरह की जो है जो लोग।
और सब एक जो एक बड़ी मशहूर जो इमाम महदी के हवाले से जो एक रिवायत कोट की जाती है ना, वो काले झंडों वाली, वो जो है काले झंडे और वो खुरासान से निकलेगा। तो मुझे एक भाई ने कहा जी खुरासान के झंडे हैं, तो मैंने कहा हदीसों में तो दज्जाल भी खुरासान से ही निकलेगा और उससे यहूदी होंगे, वो यहूदिया के इलाके से जैसे कि वो रिवायात में आता है। तो ये जो है खुरासान वाले झंडे वाली
रिवायत, वो भी रवायात जो है ना ज़ईफ़ हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़ईफ़ रवायात हैं। हमारे यहाँ बहुत सी रवायात ना सुनन की किताबों में आ गई हैं, मुझे लगता है कि वो शिया का असर ज़्यादा है।
अच्छा,
शियत का असर ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मुझे ये भी लगता है कि इसमें भी कुछ रावी शिया हैं, ये जो रवायतें हैं ना जिनमें ये बात जिक्र है कि जी उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके वालिद का नाम वो फातमी होगा, तो इसमें शिया रावी भी, यानी जिनके ऊपर बाकायदा हमारी असमा और रिजाल की किताबों में उनका नाम
क्लेम किया गया उनके बारे में
कि उनके ऊपर तशय्यु की तोहमत है या इस किस्म की। तो मुझे ये लगता है कि ये फातमी होना भी वो शियत का असर था जो हमारे यहाँ आ गया। चलें अगर वो शियत के असर के तहत भी आ गई है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ असल में वो हसन ही है, उनके यहाँ वो हुसैनी है।
ठीक है,
अहले तशय्यु के यहाँ वो हुसैनी होगा,
हजरत हसन से तो चल नहीं रहा था, तो हुसैन से ले सर
से, उनके यहाँ इमामत सारी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से चल रही है, और उनके यहाँ वो मोहम्मद बिन हसन अस्करी है, और हमारे यहाँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हसनी अल अलवी है, यानी अहले सुन्नत का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है
डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल जो आता है बारह इमामों वाला, कुरैश के बारह इमाम होंगे, अगेन ये थोड़ा सा शायद टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं, क्या उन बारह इमामों के अंदर ये कुरैशी और वो भी कुरैशी कुरैश के, तो वो बारह इमामों में क्या इमाम महदी भी उन्हीं में शामिल हैं कि नहीं?
हाँ, एक बड़ी तादाद उलमा की वो ये कहते हैं कि महदी में उसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा कुछ ने नहीं भी शामिल किया, असल में फ़र्क ये पड़ा वो सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लम फरमाया कि बारह इमामों तक ये दीन गालिब रहेगा। अब बाद उलमा ने जैसे इब्न हजर वगैरह उनकी राय ये है, या इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा वगैरह की भी राय ये है कि ये लगातार होंगे। अच्छा, यानी वो लगातार उनको शुमार करते हैं ना हजरत अबू बकर से। ठीक है,
अच्छा
हाँ, वो उनको लगातार शुमार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इससे मुराद पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छा, इससे मुराद निज़ाम है।
ठीक है,
यानी ये कहा गया है कि उनके ज़माने में दीन गालिब रहेगा, यानी जो सल्तनत इस्लामी है उसकी एक्सपेंशन होगी, तो वो एक्सपेंशन जो है वो शुरू में होती रही है।
बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, एक वक्त आया फिर जाके रुकी है। अच्छा, कुछ ने ऐसे किया, उन्होंने खुलफाए राशिदीन वगैरह को निकाल के उन्होंने कहा कि जी असल में ये सिर्फ बनू मैया के 12 लोग थे।
ठीक है, ठीक है,
ऐसा भी कर लिया गया। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये मतलब एक साथ नहीं आएंगे, तो उन्होंने दरमियान से जो है वो जैसे खुलफाए राशिदीन को चुन लिया, फिर उसके बाद हजरत हसन को, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को, फिर हजरत ईसा इब्न मरियम को, फिर इमाम महदी को, तो इस तरह से उन्होंने मतलब बारह के
अदद को पूरा किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है शियों के हवाले से, यही जो बारह इमामों का आपने जिक्र किया, तो अब जैसे कि हदीस में आता है कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला यानी दीन को फैलाएगा और ये वो, तो अब अहले तशी जो हैं वो अपने आप को यानी इधर से ही एक वो मतलब ये हदीस को कोट करते हैं और कहते हैं देखें हमारे बारह इमामों का जिक्र आपके सोर्सेज के अंदर भी मौजूद है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इनके इमाम हैं जिनको ये इमाम कंसिडर करते हैं, तो क्या वो जो कि इनके ज़रिए इनके दौर में इस्लाम बहुत फैलेगा, तो क्या इन बारह जो जो इमाम ये काउंट कर चुके हैं अब तक आ चुके हैं और कुछ रहते हैं, क्या वाकई उनके दौर में इस्लाम उस तरह फैला है कि नहीं? क्योंकि हमें तारीखी तौर में तो पता चलता है कि सादात जो थे जो रॉयल
दर्जो तदरीस में मशहूर
थे और उनके साथ बड़ा यानी कुछ नेशन में जुल्म ज़्यादती हुई, उनको बेचारों को दबाया गया, और इवन ये जो आइमा जो इनके हैं जिनको और अहले सुन्नत भी उनको आइमा को एक रिवियर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने एतबार से, तो उनकी लेकिन उनको कभी भी उस तरीके से पावर ना दी गई, ना उनके दौर में इस तरीके से उनको कोई जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी दावत को फैलाया गया, बल्कि वो बड़ी एक किस्म के मज़लूमों वाली ज़िंदगी गुजार के गए या उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहीं, तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं, आप समझते हैं कि नहीं वो बाकी इस्लाम कुछ ना कुछ तरीके से फैला?
देखिए, इसमें ना इनके सेक्स बन गया ना, बहुत सेक्स बन गया शिया के, तकरीबन तीसरी सदी हिजरी तक इनके कोई तकरीबन 120 प्लस सेक्स बन चुके थे।
अच्छा, अच्छा,
उनमें से कुछ आज भी चले आ रहे हैं जैसे इस्माइली है।
ठीक है,
अच्छा ईरान में तो ये ट्वेल्वर्स हैं ना जिन्हें इसना शरिया कहते हैं, बारह इमा को मानते हैं, इस्माइली हमारे यहाँ हंजा वगैरह में जो नॉर्दर्न एरियाज में है। ठीक, اسماعیلیوں میں جو ہے نا وہ امامت کا سلسلہ علیحدہ سے چلتا،
علیحدہ چلتا، ٹھیک ہے.
اچھا ان کے جو 12ویں امام تھے نا وہ محمد المہدی تھے. اچھا انہوں نے اپنی سلطنت بھی قائم کر لی فاطمیین،
آپ
نے مطلب دیکھا ہوگا، ہاں ہاں، بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، پھر ان کے بعد فاطمی آئے،
بالکل ٹھیک.
انہوں نے بڑی سلطنت قائم بھی کر لی تھی. اچھا ان کے 12ویں جو تھے محمد المہدی تھے، اور انہوں نے سلطنت قائم کی، انہوں نے اپنا وہ مطلب پورا ہو گیا، ان کا ظہور ہو چکا ہے محمد المہدی کا، ان کے مطابق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جو اثنا عشریہ ہے نا ان کے ہاں مطلب یہی معاملہ رہا ہے کہ یہ درس و تدریس میں مشہور ہے، بلکہ ان کے ہر امام کے بارے میں ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اس کو زہر دے کے شہید کیا گیا یا ویسے کسی نہ کسی طریقے سے. بنو عباس نے کیا، زیادہ تر تو بنو عباس نے مارے ہیں ان کے بقول، کچھ بنو امیہ نے بھی مارے ہیں. اچھا 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہے ان کے ہاں، چھوٹی عمر سے ہی غائب ہے،
ٹھیک ہے.
256 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 328 یا 29 میں، اب تقریباً سمجھے کہ 1150 سال سے وہ غائب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حیات ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح،
ان کی عمر 1150 سال.
تو اس میں وہ یہی دلائل بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی تو حیات ہیں، یا حیات خضر سے دلیل لے آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں موجود ہیں نہیں موجود ہیں، یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے وہ دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری کتابیں جو ان کا حدیثی ذخیرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا مقصد کیا ہے. امامت کا مقصد ہے کہ وہ حلال و حرام کو واضح کرے، امامت کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کو گائیڈ کرے،
ٹھیک ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ 1150 سال سے اگر امام کا مقصد یہ تھا تو امام تو یہ کام کر ہی نہیں رہا، امام تو یہ کام کر ہی نہیں رہا، تو یہ بات ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے. اب اس میں مطلب یہاں آ کے نا وہ بالکل جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی لاجواب ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ 1150 سال سے امام کا مقصد تھا کہ حلال حرام بتاتا، کیونکہ اس کی طرف الہام ہوتا ہے نا، فرشتہ بھی آتا ہے، یہ بھی ان کو
جی
ہے، فرشتہ آتا ہے، امام تو بتا نہیں رہا 1150 سال سے. اب درمیان میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے نکال لیا کہ جی کچھ لوگ امام سے رابطے میں ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رابطے میں بھی ہوتے ہیں اب وہ بھی آ کے کوئی کلیم تو کرے، چھوڑتے اس کو بھی نہیں ہے. بہت سے ہمارے ہیں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم امام کا دروازہ ہیں، جیسے یہ بابی وغیرہ اور فرقے بھی وجود میں آ گئے. خیر اس پہ ہم ایک بلکہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں، ہماری ایک تفصیلی جو ہے نا وہ سیریز کو 20 ایپیسوڈز کے اندر شیعہ کے تصور امامت کے اوپر پبلش ہو رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اس کو آپ دیکھ سکتے
ہیں.
تو یہاں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو امامت کا مقصد تھا وہ آپ نے فوت کر دیا، یعنی 1150 سال سے امت کی رہنمائی شیعہ علماء کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر شیعہ علماء امت کی رہنمائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کیا ضرورت ہے. اگر شیعہ علماء امت کی رہنمائی نہیں کر رہے 1150 سال سے، تو 1150 سال میں جو لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو امام کا مقصد ہی فوت ہو گیا. کہ امام وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، بہت لاجک منطق اور کلام وغیرہ استعمال کر کے نا ہر دور میں امام کی ضرورت ہے، ضرورت مطلب بنیاد یہاں سے، ٹھیک ہے، پہلے کل قوم انہاد یہ وہ، جیسے نبوت تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اب کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی رہنمائی کرے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو قرآن کی ایسی تفسیر انٹرپریٹیشن کرے جو اللہ کی طرف سے الہام ہو، جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، تاکہ صحیح دین لوگوں تک پہنچے. مسئلہ یہ کہ ایسا بندہ ہے کہاں پر ہے، 1150 سال سے وہ غائب ہے. یعنی آپ نے ایک عقلی طور پہ ایک چیز ثابت تو کر رہی منطق سے کہ ضرورت ہے جی امام کی ضرورت ہے، عقل اور منطق سے آپ نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کر دیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہزاروں لوگ تفسیر کر رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ کے دین پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بندہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس کی طرف اللہ وہ دین مطلب قطعیت کے ساتھ مطلب نازل ہوتا ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہے ہی نہیں نا، پھر آپ نے اس بندے کو ہی غائب کر دیا 1150 سال. تو اس لیے اب اہل تشیعوں میں بھی کچھ ریفارمرز ہیں وہ مطلب اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادتی ہے، مطلب کس طرف چلے گئے.
یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ امام محمد بن حسن جو ہیں ان کے، ان کو اور امام مہدی کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں اب ایک قسم.
نہیں نہیں ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے،
نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریفارمرز دینے آ رہے ہیں.
ہاں جو ریفارمرز ہیں وہ تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس نہیں ہے، بس ختم کرو اس معاملے کو،
ٹھیک ہے،
اس معاملے کو ختم کرو. بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ محمد المہدی ان کے بارے میں، یعنی جب 11ویں امام کی وفات ہوئی حضرت حسن عسکری کی، ان کے بیٹے تھے محمد
بن حسن،
حسن عسکری کی وفات کے ساتھ ہی 20 فرقے بن گئے. یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، محمد امام مہدی جو ان کی محمد ان کے اوپر، تو خود انہوں نے لکھا ہے حسن عسکری ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے اوپر 20 فرقے بن گئے کہ اب جو ہے ان کا بیٹا تھا نہیں تھا. مطلب یہ سب سے بڑی ڈبیٹ یہی پیدا ہو گئی کہ 12ویں امام موجود بھی تھے کہ نہیں تھے. اچھا خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ تھا، مطلب اصول کافی وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں. اور جو ان کے چچا تھے نا اصل میں حسن عسکری کے بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر،
ٹھیک ہے،
تو وہ کہتے تھے میرا بھتیجا ہے ہی نہیں، وہ کہتے تھے میرے بھائی کی اولاد تھی نہیں. اچھا ان کا نام ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جعفر کذاب, اصول کافی وغیرہ. اصول کافی کا درجہ ہمارے یہاں جیسے صحیح بخاری ہے نا, وہ اہل تشیع کیا. اب اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جعفر کذاب یہ کہتا تھا,
اس کو کذاب بنا دیا,
اس کو کذاب بنا دیا. وہ حسن عسکری کے بھائی تھے, وہ یہ کہتا تھا کہ جی حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں تھی کیونکہ وہ خود امام بننا چاہتا تھا.
اللہ اکبر. یعنی یہاں پہ ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا.
یعنی سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہو گیا کہ بنیادی مصادر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد المہدی کا جو وجود ہے بارہویں امام کا وہی مشتبہ ہے. یعنی چچا ہی نہیں مان رہا. صرف چچا نہیں ہے, وہاں 20 گروپ بن گئے ہیں. 20 گروپ بن گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ وجود بھی تھا کہ نہیں تھا. اگر تھا تو مطلب کسی نے کہا کہ جی 11ویں اصل میں مہدی تھے, حسن عسکری مہدی تھے, ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا کہ جی نہیں 12ویں تھے, لیکن مطلب ان کا ظہور جو ہے وہ پھر لمبا چوڑا اختلاف ان کے اندر ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد یعنی ایک آبسیشن نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کوئی مہدی کے, جیسے ہمارے یہاں بھی آبسیشن ایک پائی جا رہی ہے نا کہ ہم نے مہدی بننا ہے, نکالنا ہے. اور میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اس کو مہدی کو ایک جنرلائز کر دیا. انہوں نے کہا تم اس حساسیت سے باہر نکلو. اور آپ نے بھی میرا خیال ہے کچھ درمیانی چیزیں ایک نکالی ہے کہ بالکل جنرلائز بھی نہیں کیا آپ نے, اور آپ نے ایک بہت اسپیسیفک بھی نہیں کیا کہ وہ جی وہ کلیم کرے گا آ کے اور وہ مانگے گا لوگوں کو اور وہ کرے گا. آپ نے کہا کہ نہیں وہ ایک اسپیسیفک یعنی ایک انڈیویجول ہوگا لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک عدل قائم کریں گے. موٹا موٹا خاکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور اس سے زیادہ ظاہر ہے اس سے زیادہ ہمیں اس سے یعنی دین یعنی اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہے زیادہ نا. اور ہمیں کئی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میرا سوال آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, جو ہمیں جنگوں کی پتہ چلتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہلے, آپ کے خیال میں وہ یہی اسی رجل صالح
رجل من قریش
من قریش میں سے ہوگا جس کو اللہ فتوحات عطا کریں گے اور جنگیں ہوں گی بڑی بڑی. اور پھر ایک وہ بڑی جنگ کا ذکر آتا ہے جس کے اندر وہ جو ہے وہ پرندہ اڑے گا اور وہ سارا, اور اس کے بعد پھر وہ اعلان ہوگا کہ جی وہ نکل آیا, کیا نام ہے, دجال نکل آیا.
زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ اسکل پرسن ہوگا. دینی اعتبار سے نہیں, مطلب ہم اصل میں ہمارے یہاں دینی آدمی کیا سمجھتے ہیں, شیخ و تفسیر شیخ الحدیب کوئی ایسے ہی ٹائپ ہوگا نہیں. مولانا اشرف تھانوی علیہ رحمہ کا بڑا اچھا کول تھا, کسی نے کہا کہ سیاست میں آ جائے, انہوں نے کہا کہ جی مولوی ساری زندگی ہم نے جو ہے وہ کتابیں پڑھی پڑھائی ہیں, ہم سیاست نہیں کر سکتے. وہ ایک سیاسی آدمی ہوگا جس کو دنیاوی بس, دیکھیں جس نے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے مجھے بتائیں وہ کوئی تہجد گزار ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حدیثوں میں تھا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہوگی صالحیت تو بعد کی بات ہے, وہ تو بعد میں اس میں آئے گی. پہلی یہ چیز کمپیٹنس لیڈرشپ کے اعتبار سے جو ایک لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ اصل میں اس کے اندر ہوگی, کیونکہ لیڈرشپ کا بحران ہے, کرائسس ہے.
اور وہ اسی مسئلے کو ریزالو کرنے آ رہا ہے,
اسی مسئلے کو ریزالو
کرنے, یعنی علمی مسئلے سالو نہیں کرنے آ رہا.
علمی مسئلے نہیں کہ وہ اجتہاد کرے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ
ایک فرقہ یا پھر لوگوں کے آپس میں جو نہیں, وہ ایک پولیٹیکلی لوگوں کو ایکسپٹ کرے,
پولیٹیکلی جو ہے یونائٹ کرے.
اور آپ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی میجر رول یہ ہوگا,
میجر رول,
لیکن چونکہ وہ سیدنا عیسیٰ ہوں گے اللہ کے نبی ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے ان پر ایک اعتماد بھی ہوگا دینی اعتبار سے, علمی اعتبار سے بھی اعتماد ہوگا.
ہمارے یہاں لوگ اتنے حساس ہیں ہمارے مذہبی مسائل میں کہ ہمارے لوگوں نے یہ ڈیبیٹ پیدا کر دی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو فقہ حنفی کی پیروی کریں گے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا. تو اصل میں ہمارے یہاں ساری سوچ یہی چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ کہ مذہبی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے نہیں, مذہبی اعتبار سے آپ اپنا سب کچھ فالو کرو. مطلب مذہبی اعتبار سے لوگوں کے پاس کیا کم ہے ابھی, مطلب علماء کی تعداد کیا کم ہے, ٹھیک ہے, یا حلال حرام کا فتویٰ دینے والے کم ہیں.
ایک آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کہ کچھ سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوں گے. اب جنرلی ون آف دا ریزنز میں سمجھتا ہوں امام مہدی, دیکھیں ایک عام انڈو امتی ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امام مہدی کا تصور نا ایک عام بندے کے مسلمان کے ذہن میں درمیان کا کوئی ہے, یعنی وہ بالکل عام امتی بھی نہیں ہے اور وہ نبی بھی نہیں ہے, لیکن وہ کوئی درمیان میں ایک سیکرٹ انڈیویجول ہے, ایک مقدس ہستی ہے. ہاں اب وہ مقدس کتنا ہے یہ ہے. اور آپ نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ یعنی مثال کے طور پہ ہمیں نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ایک اللہ لشکر کو دھنسا دیں گے, اور کیا ہمیں کچھ اور بھی روایات میں ملتا ہے کہ کوئی وہ کوئی سپر نیچرل ایسی چیزیں ہوں گی, کوئی کرامات شرامات ہوں گی؟
کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ چیز بھی سپورٹ کرتی ہے اصل میں اس کے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں, اس کو سپورٹ کریں, پولیٹیکلی اس کو سپورٹ کریں.
ٹھیک ہے,
صرف اور صرف یہی بات ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یار آپ کی امت کے مسائل حل کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں یار کہ فلسطین میں حماس کھڑی ہوئی ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, پوری دنیا خود کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہوگا یہی کہ ایک بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی گٹس ہیں, وہ لیڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ایسے میں ایک تو لوگوں کی رائے بھی ہوگی اور ایسے میں یہ واقعہ بھی ہو جائے گا, تاکہ اگر کچھ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں तो वो भी सीधे,
और ये सिर्फ एक वाक्य का हमें पता चलता है, इसके अलावा हमें और कोई वाक्यात ऐसे सुपर नेचुरल मिलते हैं?
नहीं, इसके अलावा हजरत ईसा इब्न मरियम के हवाले से तो
उनके तो मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं
कि दज्जाल जो है उनको
देख के पिघलेगा और फिर
वो बहुत ज्यादा है, और जब उनका आसमानों से नुजूल होगा तो दो फरिश्तों के परों पर उन्होंने हाथ रखे होंगे, वो तो एक शान के साथ होगा, मतलब वहां मिरेकल है, मौजजात है। मेहदी जो है एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर है, बस
इमाम महदी बनने का दावा भी कर लेता तो हम कहेंगे भाई तुम एक आम इंडिविजुअल हो, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर अगर बन सकते हो तो बड़ी बात है, और अगर उसमें तुम खैर फैला सकते हो तो हम एक जनरल माना में शायद तुम्हें भी समझ ले कि तुम अल्लाह की तरफ से गाइडेड बंदे हो, लेकिन अब क्या मतलब है कि उसे इस तरीके से हम समझाएंगे?
देखिए साले का आ गया, सालिहीन थोड़े हैं, उम्मत
नेक लोग तो बहुत है,
बहुत हैं सालिहीन,
और पॉलिटिकल डॉक्टर साहब पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स जो है, पॉलिटिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी, उनमें भी कई लोग ऐसे गुजरे हैं जो नेक होते हैं। हाँ, उनकी नेकी की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, बाजूकात वो नेकी पॉलिटिक्स में नजर आती है, बाजूकात नहीं नजर आती, बाजूकात उनकी इंडिविजुअल लाइफ तक महदूद होती है।
जैसे देखिए ना, एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही है बल्कि, कि अल्लाह ताला सात लोगों को क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब करे, उनमें से एक इमाम आदिल भी होगा, तो अब यूं है इमाम आदिल होगा वो, एक आदिल हुक्मरान होगा, एक मुनसिफ हुक्मरान होगा, मुझे हुक्मरान दुनिया में बहुत हो गुजरे।
जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर फॉर दिस डिटेल, इंशाल्लाह इट वाज वेरी बेनिफिशियल। तो टू कंक्लूड, इंशाल्लाह वो यही है कि आपने जैसे कहा कि वो कोई एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर का अल्लाह ताला हदीस में जिक्र आता है, और जाहिर है अल्लाह ताला उनके ज़रिए अदल को कायम करेंगे, और वो कुरैशी होंगे, और जैसे आपने बताया, और इस तरीके से वो यानी कोई बहुत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइम है उसके करीब करीब उनका टाइम होगा, और उसके बाद बैतुल्ला में उनको पनाह लेंगे और उनके हाथ में बैत वहाँ पे होगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मत से एक्सपेक्टेड यानी उम्मत का, और वो अल्लाह ताला की तरफ से यानी एक यानी कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा आगे बढ़ के मांग रहा होगा, बल्कि अल्लाह ताला हालात ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर वो उसको लोगों के दिल मायल हो जाएंगे, वो लोग समझेंगे यार इसको बनना चाहिए, और उसके अंदर कॉम्पिटेंस होगी इस चीज़ की करने के लिए। तो बजाय ये कि आप इन चीज़ों की तरफ जाएं कि क्लेम करने के लिए, या उन लोगों की बातों को अहमियत दें जो बाकायदा क्लेम करके बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल उसे अवॉइड करने के बजाय आप ऐसा करें कि इस जज्बे के साथ रहें कि अगर अल्लाह किसी ऐसे बंदे का ज़हूर होता है तो हम उसका साथ दें, जो असल आपने बात की ना कि वो पॉलिटिकल लीडर है, अल्लाह वो इस्लाह करना चाहता है, और उसके पास आपको कुछ साइंस भी मिल गए, तो अब आप ऐसे नेक बंदे की अपनी जो है पर्सनल बायसेस को छोड़ के, पर्सनल प्रेफरेंसेस को छोड़ के आप क्या करें, उनके साथ मिलकर उनकी वो करें। और इससे और हमने ये भी वाजे कर दिया, आपने जैसे बताया कि शिया के हाँ जो है अहले तशय्यो जो है उनके हाँ ये कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो सुन्नी नैरेटिव है, और उनको आपस में खलत मलत करना, जिस तरीके से बाज़ आपने कहा कुछ सुनन की रिवायात के अंदर कुछ उनका हमें असर नज़र आता है, तो वो चीज़ें जो है ना वो हमें छांटी करने की ज़रूरत है, और हमें सिर्फ उस नैरेटिव तक रहना जो हमारे लिए जो काबिल एतमाद है, जो मुस्नद है, जिस पर हम एतमाद कर सकते हैं, सीधी सी बात है। जज़ाकअल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।